नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से भले चंगे हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस बाइबल अध्ययन क्रम में इन दिनों भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा भजन संहिता 11 और 12 अध्याय, जिसमें हम धर्मी की परीक्षा के बारे देख रहे थे। इसके साथ हमने यह भी देखा कि परमेश्वर इस संसार में रहते हुए हम सबों को चाहता है कि हम उसकी निकटता में आए। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 13 से अध्याय 15 तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम और दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, उसे हम सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, दुखी और चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी न किसी रूप में तनाव में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, ताकि आज हम दाऊद के जीवन से, इस भजन से आशीषों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए श्रोता मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। आज का हमारा विषय है भजन संहिता 13 में दाऊद की गंभीर दुर्दशा। दाऊद की गंभीर दुर्दशा, यह भजन संग्रह का एक विषादपूर्ण भाग है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि भजन 9 से 15 भावी महाक्लेश के विषय में चर्चा करते हैं, जब मसीही विरोधी और इसराइल के बचे हुए भक्त होंगे। वह एक महान परख का समय होगा। दाऊद ने यह भजन अपने परीक्षा के अनुभवों से लिखा है, परंतु इसकी वर्तमान प्रासंगिकता भी है। इसका अर्थानुवाद भविष्यवाणी और इतिहास से भी संबंधित है, जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद अंत समय तक जाता है। मेरे मित्रों, इस भजन को लिखते समय दाऊद राजा शाऊल से बचकर भाग रहा था। इस समय वह अदुल्लाम की गुफाओं में छिपा हुआ था और दूसरी ओर से पलिस्ती भी उसे खोज रहे थे। उस पर दिन प्रतिदिन निराशा के बादल छाए हुए थे, अतः वह शरीर और मानसिकता से टूट चुका था। ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर को पुकारता है। तो आइए हम भजन संहिता 13 उसके 1 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? यहाँ पर दाऊद पूर्ण रूपेण निराशवादी प्रतीत होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है और वह अकेला रह गया है। डेली टस कहता है कि यह एक लंबी और गहरी आह भरी सांस है। यह अंततः एक राहत पाए सीने से निकलती है, एक अर्थ शांत एवं विनम्र प्रार्थना द्वारा निकलती है। भजन संहिता 13 उसके 2 पद में लिखा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? दाऊद पूछता है, ऐसा कब तक होगा? इस समय दाऊद अत्यधिक निराश है। वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसका यही एक स्रोत एवं मार्ग है। भजन संहिता 13 उसके 3 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। इस भजन के लिखते समय दाऊद घोर संकट में था। वह सोते हुए भी डरता था कि उसके शत्रु उसे मार न डालें, अतः उसे विश्राम की अत्यधिक आवश्यकता थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे नींद और विश्राम प्रदान करे। भजन संहिता 13 के 4 पद में लिखा है, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। दाऊद को पकड़कर बैरी अत्यधिक आनंदित होता। दाऊद को पकड़ना वास्तव में परमेश्वर की पराजय का आनंद था, जो शत्रु चाहता था। इस कारण दाऊद प्रार्थना करता है कि शत्रु का पलड़ा भारी न होने पाए। दुख की लंबी सांस लेकर वह अपनी प्रार्थना करता रहता है और अंत में वह परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखने पाता है। यह एक अद्भुत भजन है। जी हाँ, भजन संहिता 13 उसके 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे हृदय से मगन होगा। मेरे मित्रों, दाऊद ने स्वयं को जोखिम से निकाल लेने में चतुर नहीं समझा। निसंदेह वह सतर्क रहता था, परंतु वह जानता था कि परमेश्वर ही उसे बचा सकता है, वह उसका उद्धार है। भजन संहिता 13 उसके 6 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मेरे मित्रों, आप जहां भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप परमेश्वर का स्तुति गान कर सकते हैं। इस समय मेरे लिए परमेश्वर की स्तुति करना आसान है क्योंकि अभी मैं भला चंगा हूँ, परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है। मुझे एक मनुष्य का स्मरण आता है जिसने वर्षों तक परमेश्वर को अनदेखा किया, अंत में वह कैंसर का रोगी हो गया, वह मुंह के बल गिर गया। जी हाँ, हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनकर उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, यद्यपि उसकी दशा बुरी है। मेरे एक मित्र ने उसे भेंट की और मुझसे कहा, आपका मन आनंदित और विनम्र होगा कि संकट में भी वह व्यक्त करता है कि परमेश्वर उसके साथ भला है और परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया तथा वह कैसा महान है। जब कोई ऐसी स्थिति में परमेश्वर की स्तुति करे तो वह मुझसे बहुत आगे निकल चुका है। जी हाँ, इस भजन में हम दाऊद की गंभीर दुर्दशा को देखते हैं जो महाक्लेश के समय परमेश्वर की प्रजा की दुर्दशा है। यहाँ पर अब भजन 13 समाप्त होता है और अब भजन 14 में हम आते हैं जिसका विषय है अंतिम दिनों में मनुष्य की भ्रष्ट दशा नास्तिक घिनौनी और विद्रोही है। यह भजन अन्य भजनों से जुड़ा हुआ है, विशेष करके 12 भजन से। आपको स्मरण होगा कि हमने उस भजन में अंतिम दिनों का भ्रष्टाचार देखा था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भक्तजन नहीं रहे और अभक्तों का राज है। भ्रष्टाचार, दुष्टता और अव्यवस्था का बोलबाला था। आप सोचेंगे कि यह वर्तमान स्थिति है, परंतु सच तो यह है कि आपने कुछ भी नहीं देखा है। महाक्लेश तक रुकिए। प्रसंगवश मैं यह आशा नहीं करता कि आप महाक्लेश देखें, क्योंकि विश्वासियों की देह महाक्लेश में उपस्थित नहीं होगी। प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद में कह चुका है की परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यह विश्वासियों को उसने कहा। कलीसिया अर्थात सच्चे विश्वासी उस समय के पूर्व ही दुनिया से कूच कर जाएंगे। यह भजन निश्चय ही हमारे सामने अंतिम दिनों का भ्रष्टाचार और दुष्टता को प्रस्तुत करता है। बिशप हो ने इसका अति उत्तम क्रम प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस भजन को 3 भागों में विभाजित किया है, संसार का भ्रष्टाचार, परमेश्वर की प्रजा से बैर, उद्धार की लालसा और प्रार्थना। भजन संहिता 14 का यही प्रतिरूप है। यह संक्षिप्त और महत्वपूर्ण है, तो आइए देखें संसार का भ्रष्टाचार। भजन संहिता 14 उसके 1 पद में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने जिन्होंने काम किए हैं और कोई सुकर्मी नहीं। यहाँ पर मूर्ख शब्द का इब्रानी पर्यायवाची शब्द है, नाबाल। आपको स्मरण होगा कि इस नाम का एक पुरुष था जिसकी पत्नी अबीगेल थी। पहला शामुएल की पुस्तक 25 अध्याय में हम उसे पाते हैं। उसका नाम उसकी सही परिभाषा देता था जिसका अर्थ है मूर्ख, निर्बोध, पागल आदि। मेरा एक बुद्धिमान मित्र है जो नास्तिकों के साथ विवाद करने में सफल रहता है। वह एक बार नास्तिकों की सभा में था कि किसी ने टिप्पणी की, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर है, मनुष्य की आत्मा नहीं है और वह एक कुत्ते की नाई मरता है और वह एक निर्बुद्धि मनुष्य की नाई कहता गया। मेरा मित्र सभा विसर्जन तक रुका रहा और उसके पास जाकर बोला, मेरी समझ में आपने कहा कि आप नास्तिक हैं। यह सुनकर उसने परमेश्वर के अस्तित्व में न होने पर विचारों की बौछार कर दी। मेरे मित्र ने उससे कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ मूर्ख का अर्थ है पागल। अतः या तो आप जन समूह को आकर्षित करने के लिए व्यर्थ की बातें कर रहे थे या फिर आप पागल हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या है। वह व्यक्ति मुंह फेर कर चला गया। मेरे मित्रों, हम ब्रह्मांड के विषय इतना अधिक जानते हुए भी कि यदि कहें कि परमेश्वर नहीं है तो हम मूर्ख ही हैं। मनुष्य जानता है कि ब्रह्मांड उसके द्वारा बनाई गई घड़ी से कहीं अधिक उचित रूप से काम कर रहा है, और आज तक ऐसी कोई भी घड़ी अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है। किसी न किसी ने उसे बनाया है। अब यही ब्रह्मांड जो एक मानव निर्मित घड़ी से अधिक अच्छा काम करता है, सिद्ध कर देता है कि जगत का निर्माता अवश्य है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है। वही मूर्ख अब दृश्य में उभर रहा है। हम इसकी झलक भजन संहिता 10 उसके 4 पद में देख चुके हैं। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह मानवीय भ्रष्ट अवस्था की गहराई को प्रकट करता है। आज हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षक जो PhD प्राप्त करते हैं, PhD अवश्य हैं, परंतु वे नास्तिक हैं। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक कहता हूं कि मानवीय भ्रष्टाचार में मनुष्य की सबसे अधिक पतित अवस्था नास्तिकवाद है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि आप यह विश्वास न करें कि परमेश्वर है तो आप पागल हैं। आप में बुद्धि नहीं है। बौद्धिकता का उच्च स्तर रखना पर्याप्त नहीं है। मैं एक PhD प्राप्त व्यक्ति को जानता हूं जिसमें इतनी भी समझ नहीं थी कि वर्षा से कैसे बचें। मैं एक दिन उसके साथ मैदान की ओर जा रहा था और उसी समय वर्षा आरंभ हो गई। उसने मुझे देखकर कहा, अब क्या करें। वह वास्तव में जानना चाहता था एक बुद्धिजीवी वर्षा में क्या करेगा। मैंने उससे कहा, उचित होगा कि हम निकल चलें। मुझ तक को पता था कि क्या करें, परंतु वह नहीं जानता था कि क्या करें। यह आप देख सकते हैं कि उपाधियां मनुष्य की बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं है। वे बिगड़ गए। उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखेंगे कि अधिकांश नास्तिक महापापी भी हैं। घोर अनैतिकता उनके गुणों में से एक है। कॉलेजों में अर्थात महाविद्यालय में प्रायः जाने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि नास्तिक होने का दावा करने वालों में घोर अनैतिक व्यवहार करने वालों की संख्या आश्चर्यजनक है। कुछ तो वास्तव में घिनौने काम करते हैं। मेरे कहने का अर्थ है भौतिक शारीरिक घिनौने काम। भजन संहिता 14 उसके 2 पद में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और उसने क्या देखा, आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 14 उसके 3 में, वे सब के सब भटक गए, वे सब के सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस इस पद का संदर्भ देता है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, अर्थात एक भी नहीं। यहाँ पर पौलुस नास्तिकों के बारे में नहीं, सबके बारे में कह रहा है। यह आपका और मेरा चित्रण है। मैं नास्तिक नहीं हूँ और मेरे विचार में आप भी नास्तिक नहीं हैं, परंतु हम सब पापी हैं। हम भलाई करने वाले नहीं हैं। मनुष्य की दशा भ्रष्ट हो चुकी है और वह प्रथम 3 पदों में मनुष्य की उस अवस्था का भी वर्णन करता है जहां वह अधिक से अधिक गिर सकता है। हम देखते हैं आगे, परमेश्वर की प्रजा से बैर। वे परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर की प्रजा के भी विरोधी हैं। भजन संहिता 14 उसके 4 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। मेरा एक मित्र है जो कॉलेज में पढ़ाता है। वह मुक्त विचारवादी है। वह राजनेताओं को कार में घुमाने मुक्तिवादी विचार को कहता है। उसका कहना है कि वे गरीबों की दुर्दशा को तो समझते नहीं है। परंतु स्वयं को मुक्ति विचारवादी अवश्य कहते हैं। वे लुका रचित सुसमाचार में वर्णित उस धनवान पुरुष की नाई हैं जो मन को समझने के लिए द्वार पर खड़े या बैठे गरीब लाजर के लिए चूर चार गिरा देता था। लुका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने आज तक ऐसा कोई धनवान मनुष्य नहीं देखा जो गरीबों के लिए अपना धन बांट दे। वह तो हम गरीबों पर कर लगाकर हमारी जान निकाल देता है परंतु स्वयं कर से बचता है। परमेश्वर तो मानवीय स्वभाव को जानता है, क्या वह नहीं जानता है? यह उनका चित्रण है, उद्धार के लिए लालसा एवं प्रार्थना। आगे देखते हैं, यह है विजय की पुकार। भजन संहिता 14 उसके 7 में लिखा है, भला हो कि इसराइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता, जब यहोवा अपने प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इसराइल आनंदित होगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह पद उस महिमामय दिन की आशा प्रकट करती है जिस दिन सियोन से इसराइल का उद्धार आएगा। उस दिन याकूब आनंद करेगा और इसराइल मगन होगा। आप इस पद का गलत अर्थ ना लगाएं जो कहे कि इसराइल के लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं। वह यह सिद्ध करता है कि उसे भजन का अधिक ज्ञान नहीं है। वह वचन के अन्य भागों में स्पष्ट व्यक्त बातों को अनदेखा करने का प्रयास करता तो है, परंतु वह इस तथ्य का इनकार कैसे करेगा कि भजनकार की पुकार और आनंद उस भविष्य में है जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा और उस राज्य का केंद्र इसराइल होगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन 14 समाप्त होता है और अब हम भजन 15 अध्याय में आते हैं। इसका विषय है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों का वर्णन। यह भी एक छोटा सा भजन है और भजन 9 में आरंभ अध्याय का अंत करता है। इन भजनों के अवलोकन से आप एक निश्चित क्रमवार विकास देखते हैं। भजन 9 और 10 में शैतान का मानव प्रकट है जो घमंड, अभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करता है। भजन 11 में धर्मी का परखा जाना दर्शाया गया है और तब भजन 12 में हम अपराधियों के मध्य धर्मी जन और महाक्लेश की अभिव्यक्ति को देखते हैं। भजन 13 में महाक्लेश के समय परमेश्वर की प्रजा की दुर्दशा का वर्णन है और तब भजन 14 में अंतिम दिनों में मनुष्य का भ्रष्टाचार व्यक्त किया गया है, उसका नास्तिकतावाद, उसकी घिनौने काम, उसका विद्रोह। और अब भजन 15 में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वालों की व्याख्या करता है। इसमें यहोवा की उपस्थिति में आने वालों का वर्णन है। तो आइए हम भजन संहिता 15 उसके 1 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ध्यान दीजिए, पवित्र पर्वत केवल एक ही है जिसे बाइबल सियोन पर्वत कहती है। यह पर्वत इसराइल देश में है। भजनकार उन लोगों का उल्लेख कर रहा है जो सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रवेश करेंगे। इस राज्य की स्थापना मसीह यीशु पृथ्वी पर करेगा और इसराइल उस राज्य का केंद्र होगा। भजन संहिता 15 के 2-4 पद में लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवायों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, हमारे आज के समाज में इसका विपरीत ही होता है। निस्सार मनुष्य को सम्मान दिया जाता है और ईश्वर भक्त को तुच्छ समझा जाता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उसे उठानी पड़े, अर्थात वह जो सच कहता है और अपने आप को बचाने के लिए भी नहीं बदलता है। भजन संहिता 15 के 5 में हम पढ़ते हैं, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। मेरे मित्रों, इस भजन में दाऊद ठीक वही कहता है जो याकूब ने आगे चलकर कहा, दूसरा अध्याय उसके 18 पद में, कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मुझे इस संदर्भ में जॉन कॉल्विन की बात बहुत अच्छी लगती है। केवल विश्वास द्वारा उद्धार दिलाता है, परंतु उद्धारक विश्वास अकेला नहीं है। परमेश्वर के समक्ष कौन खड़ा हो सकता है? वे जिन्हें परमेश्वर में विश्वास हो चुका है, और परिणाम स्वरूप उनका जीवन धार्मिकता का जीवन है। यीशु के आगमन की इस समय बहुत चर्चा है, परंतु मैं उसके आगमन की प्रतीक्षा करने वालों में कोई परिवर्तन नहीं देखता हूँ। मेरे मित्रों, यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मसीह शीघ्र आने वाला है, या आप यह विश्वास करते हैं कि एक दिन आपको उसके समक्ष खड़े होकर लेखा देना होगा, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर के लिए लेखादायी हो। यह एक ऐसी परख है जिससे सिद्ध होगा कि आप यीशु से प्रेम करते हैं या नहीं, और उसके आगमन की बाट जोहते हैं या नहीं। यह एक अति उत्तम भजन है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता 13, 14 और 15, जो कि छोटे भजन हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भजन है। आज मुझे और आपको भी इन भजन के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम निश्चित रूप से परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ हम मुंह से बोल रहे हैं और उसके लिए तैयार नहीं है, जैसा कि आज बहुत से लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, और आज इस वचन पर अवश्य ही ध्यान देते हुए इसे अपने जीवन में आप लागू करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा तेरे पास।